डॉक्टर डेविड डिसिल्वा, नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया, सत्र 6, पठन 1, पत्रस नातेदारी संरचनाओं और मूल्यों से परिचित। 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर दिए गए अपने व्याख्यान में है। यह सत्र 6 है, एक पत्रस का पठन जो नातेदारी संरचनाओं और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस सत्र में हम एक पत्रस पर बारीकी से नजर डालेंगे जो हमने अपने पिछले व्याख्यान में नातेदारी, नातेदारी समूहों के गठन और नातेदारी समूहों के लोकाचार के साथ साथ प्राकृतिक परिवारों को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सीखा है, ताकि यह देखा जा सके कि यह किस तरह से एक पत्रस की बयानबाजी की रणनीति देहाती रणनीति को उजागर कर सकता है, क्योंकि लेखक यहाँ उन लोगों की स्थिति को संबोधित करता है। अब हम पहले ही सम्मान और शर्म के खंडों के संबंध में एक पत्रस की पादरी सेटिंग का पता लगा चुके हैं। पत्रस आधुनिक तुर्की के पश्चिमी आधे भाग, 5 प्रांतों, रोमन प्रांतों में कलीसियाओं के एक समूह को लिख रहा है, जो अब पश्चिमी तुर्की है, और पत्रस इन ईसाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या की पहचान करता है, जो उनके गैर ईसाई पड़ोसियों से मिलने वाला प्रतिरोध है, जिन्होंने धर्मांतरित लोगों को उनके पीछे छोड़ी गई सामान्य जीवन शैली और मूल्यों पर वापस लाने के लिए अपने पास मौजूद सभी शर्मनाक तकनीकों, अपमान, फटकार, यहाँ तक कि कुछ मामलों में शारीरिक दुर्व्यवहार, हाशिए पर डालने का इस्तेमाल किया है। अब हम पाएंगे कि सम्मान और शर्म के विचारों के साथ साथ रिश्तेदारी की भाषा भी संबोधित व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति लेखक की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले लेखक ने ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों द्वारा अनुभव किए गए नए परिवार में नए जन्म के तथ्य और तरीके दोनों पर ध्यान दिया है। वह यह भी इंगित करेगा कि नए परिवार में यह नया जन्म विश्वासियों, धर्मांतरित लोगों और प्राकृतिक रिश्तेदारी समूहों के बीच कितनी दूरी पैदा करता है, जिसे कम से कम वैचारिक रूप से वे पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए उनके पत्र की शुरुआत से ही हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य हैं। अपनी महान दया के अनुसार उसने हमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, एक अविनाशी, निष्कलंक और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इसी तरह पहले अध्याय के अंत में वह उनके बारे में लिखता है, तुम नाशवान बीज से नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा नया जन्म पाए हो। क्योंकि अब यशायाह से उद्धृत करते हुए, सारा प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा बना रहता है। और यह वचन ही वह शुभ समाचार है जो तुम्हें सुनाया गया है। पत्रस सुसमाचार के वचन को प्राप्त करने और उस पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के कार्य के बारे में बात कर रहा है, जो वास्तव में दूसरा जन्म है। वह वचन एक रोपित बीज था जो एक नए व्यक्ति, एक नए परिवार में एक नए जन्म और एक ऐसे परिवार को जन्म देता है जो हर तरह से उस परिवार से बेहतर है जिसे कई मामलों में इन धर्मांतरित लोगों को किसी न किसी अर्थ में पीछे छोड़ना पड़ा है। यह उन लोगों के बीच एक नया रिश्तेदारी समूह बनाता है जो इस नए जन्म और इस सामान्य माता पिता को साझा करते हैं। ईसाई समूह एक भाईचारा बन जाता है, एक ऐसा शब्द जो 2:17 और 5:09 में दिखाई देता है। इस नए परिवार में नया जन्म बहुत लाभ और विशेषाधिकार लाता है, श्रोता के प्राकृतिक जन्मों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार। यह एक श्रेष्ठ बीज द्वारा लाया जाता है, ऐसा बीज नहीं जो केवल नश्वर जीवन प्रदान करता है, बल्कि ऐसा बीज जो अमर अनंत जीवन प्रदान करता है। यह एक ऐसे परिवार में जन्म है जो एक बड़ी विरासत साझा करता है, अर्थात महिमा और सम्मान जो एक ईश्वर, इस घराने के मुखिया और ईश्वर के मसीहा का है, जिसका आनंद भ्रष्टता से परे जीवन में हमेशा के लिए लिया जाना है। श्रोता का पहला जन्म एक प्राकृतिक रिश्तेदारी समूह में उनका प्राकृतिक जन्म उनके लिए एक तरह की विरासत लेकर आया। यह अज्ञानता ईश्वरविहीन परंपराओं उन मूल्यों की विरासत थी जो एक ईश्वर से अलगाव से पैदा हुए थे। लेखक इस बारे में इस प्रकार बोलता है, आपको अपने प्राकृतिक पूर्वजों से विरासत में मिली व्यर्थ की आदतों से छुटकारा मिला है, न कि चांदी या सोने जैसी नाशवान चीजों से, बल्कि मसीह के अनमोल लहू से, जो निष्कलंक या दाग रहित मेने के लहू के समान है। इसके विपरीत परमेश्वर के नए घराने में नया जन्म इन परेशान मसीहियों को न केवल एक बेहतर विरासत प्रदान करता है जिसकी वे आशा कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए उपदेशित वचन को सुनने और उसका जवाब देने के परिणामस्वरूप उनके सम्मान की एक मजबूत पुष्टि भी प्रदान करता है। एक ओर उन्होंने अपने प्राकृतिक जन्म से प्राप्त सम्मान या स्थिति को खो दिया होगा, लेकिन अब उसके कारण या उसके परिणामस्वरूप वे न केवल प्राकृतिक माता पिता के सम्मान में बल्कि ब्रह्मांड के परमेश्वर के सम्मान में भी भागीदार हैं जो बन गए हैं या जो उस परिवार का मुखिया है जिसका वे हिस्सा बन गए हैं। नए परिवार में इस नए जन्म के कुछ खास नैतिक निहितार्थ हैं। लेखक के अनुसार पहला निहितार्थ यह है कि धर्मांतरित व्यक्ति को अपने नए माता पिता की तरह विकसित होना चाहिए। हम एक पत्रस 1:14-16 में पढ़ते हैं, आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपनी पिछली अज्ञानता की अभिलाषाओं के अनुरूप मत बनो, बल्कि जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लैव्य व्यवस्था का एक मुख्य पाठ पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ यहाँ बच्चों की छवि के साथ संयुक्त है जो अपने माता पिता को उन्हें माता पिता के चरित्र की समानता में आकार देने और ढालने की अनुमति देते हैं। हमारे पिता के चरित्र को जानना हमें इस प्रक्रिया में और भी प्रेरित करना चाहिए। लेखक अगले ही श्लोक में लिखता है, यदि आप उसे पिता के रूप में पुकारते हैं जो प्रत्येक के कर्मों के अनुसार निष्पक्ष रूप से न्याय करता है तो अपने निर्वासन के समय में भय के साथ आचरण करें। हमारे नए पिता के चरित्र की समानता में बढ़ने के साथ साथ दूसरा नैतिक निहितार्थ विश्वासियों के एक दूसरे के साथ संबंधों से संबंधित है। लेखक लिखते हैं कि विश्वासियों ने सच्चे भाईचारे के प्रेम को व्यक्त करने के उद्देश्य से अपने दिलों को शुद्ध किया है। वहां यूनानी शब्द फिलाडेल्फिया है, वही शब्द जिसका उपयोग प्लूटार्क ने भाईचारे के प्रेम पर अपने ग्रंथ में किया है। भाई बहनों में किस तरह का प्यार होना चाहिए और लेखक उनसे बहनों और भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने, फिलाडेल्फिया के लोगों की तरह व्यवहार करने, एक दूसरे के बीच भाई बहनों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाले लोग बनने का आग्रह करता है। हम ईसाई समुदाय के भीतर बातचीत के इस लेखक के वर्णन में भाई बहन के रिश्तों को निर्देशित करने वाली बड़ी सांस्कृतिक नैतिकता फिलाडेल्फिया की नैतिकता के कई पहलुओं को पहचान सकते हैं। यहाँ मैं हमें शास्त्रों के पाठ की कई स्लाइडों के माध्यम से ले जाऊंगा। उदाहरण के लिए 1:22 में लेखक लिखता है, सच्चे दिल से एक दूसरे से प्रेम करो, और फिर 2:17 में भाईचारे से प्रेम करो। 4:08 में वह लोकाचार के उस पहलू को देखता है जहां प्रेम चोटों पर विजय प्राप्त करता है जो कि रिश्तेदारी संबंधों को चिह्नित करता है। सबसे बढ़कर एक दूसरे से ईमानदारी से प्यार करते रहें क्योंकि प्यार बहुत सारे पापों को ढक देता है। गैर रिश्तेदार सदस्यों के बीच अपमान और अपमान के कारण प्रतिशोध को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारों के बीच अपमान और चोटों का सामना धैर्य के साथ किया जाना चाहिए, प्यार से जो पारस्परिक अपमान का जवाब देने और उसे बढ़ाने के बजाय उसे ढक देता है और अलग कर देता है। वह उनसे सभी द्वेष, सभी छलकपट, सभी दिखावटी पाखंड, ईर्ष्या और सभी बदनामी को दूर करने का आग्रह करता है। छलकपट, दिखावा, ईर्ष्या, ये चीजें प्राचीन दुनिया में प्रतिस्पर्धियों की विशेषता हैं, न कि उन लोगों की जो एक दूसरे के सामान्य हित के लिए सहयोग करते हैं। सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धियों के लिए बदनामी उचित है, लेकिन रिश्तेदार एक दूसरे के सम्मान को नष्ट करने के बजाय उसकी रक्षा करते हैं। लेखक ने 3.8 में उनसे मन की एकता, सहानुभूति, भाईचारे का प्यार, कोमल हृदय और विनम्र मन रखने का भी आग्रह किया है। फिर से हम यहाँ उन गुणों की एक सूची पाते हैं जो प्राचीन दुनिया में भाई बहनों की विशेषता वाले सामंजस्य और एकता के साथ विशेष रूप से प्रतिध्वनित होते हैं। लेखक पहली सदी में पूरे ईसाई आंदोलन की तरह जानता है कि ईसाई सभा की बैठक आतिथ्य पर निर्भर करती है। ईसाइयों द्वारा अपने घरों, अपने भौतिक घरों को एक दूसरे के लिए खोलना और उनका स्वागत करना, इसलिए वह उनसे बिना किसी शिकायत के एक दूसरे का आतिथ्य दिखाने का आग्रह करता है। ईसाई आंदोलन के लिए आतिथ्य बहुत जरूरी था। समूह की बैठक से लेकर मिशनरियों और शिक्षकों के समर्थन से लेकर अन्य चर्चों के ईसाई प्रतिनिधियों के समर्थन तक, आतिथ्य के बिना ईसाई समूह के पास कोई सामाजिक स्थान नहीं होता जहां वे मिलते या चर्चों के बढ़ते नेटवर्क का समर्थन करते। एडविन हैच नामक एक क्लासिकिस्ट हमें ईसाई समूह की यह बहुत अच्छी तस्वीर देता है जो पहली सदी में भूमध्य सागर व्यापी था। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सभी महान व्यापारिक मार्गों के शहरों से अजनबी लोग निरंतर गुजरते थे। ईसाई नाम रखने वाले हर अजनबी को आतिथ्य का अधिकार था। ईसाई धर्म इसलिए था और बढ़ा क्योंकि यह एक महान बिरादरी थी। भाई नाम एक वास्तविक तथ्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। एक मसीही को अपने साथी मसीहियों के समुदाय में जहां भी जाना होता था वहां उसका स्वागत और आतिथ्य होता था। लेखक एक पत्रस इस तरह की संस्कृति में योगदान देता है जिसके बारे में बाद में क्लासिकिस्ट लिखने में सक्षम होता है। यह संस्कृति ऐसी है जिसमें अजनबियों को एक साथ लाया जाता है। जो लोग एक दूसरे से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं, उन्हें एक ऐसे समुदाय में एक साथ लाया जाता है जो स्वेच्छा से एक दूसरे के प्रति निकटतम स्तर पर परिवार के दायित्वों को स्वीकार करता है। और यह कम से कम इस क्लासिकिस्ट एडविन हैच की नजर में प्राचीन दुनिया में ईसाई आंदोलन के विकास के मूलभूत कारणों में से एक बन जाता है। अब इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि प्राकृतिक परिवार समूह के रूप में ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए हम पूरे नए नियम में पाते हैं कि कैसे एक परिवार के मुखिया का धर्म परिवर्तन पूरे प्राकृतिक परिवार के धर्म परिवर्तन की ओर ले जाता है या उसे शामिल करता है जिसका वह पिता, पति और स्वामी है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में कुर्नेलियुस शतपति के मामले में भी यही हुआ। इसके अलावा फिलिप्पी के जेलर का उल्लेख प्रेरितों के काम अध्याय 16 में किया गया है और हम इसे कुरिंथ के स्टेफन्स में पाते हैं जिसने अपने पूरे घराने के साथ धर्म परिवर्तन किया और 2 तीमुथियुस में ओनेसिफोरस का भी उल्लेख है। यह आंदोलन आरंभिक ईसाई आंदोलन इस तरह के परिवारों के मुखियाओं पर निर्भर था जो अनिवार्य रूप से अपने पूरे परिवार को उस परिवार के मुखिया होने के कारण चर्च में लाते थे और इन पूर्वोक्त लोगों जैसे ईसाई गृहस्थों की आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा और यह स्वाभाविक ईसाई परिवार घरेलू संहिताओं के लिए सेटिंग बन गया जैसा कि वे जाने जाते हैं जो इफिसियों 5 और 6 या कुलुस्सियों 3 में पाए जाते हैं जो अध्याय 4 में ठीक से समाहित हैं और घरेलू संहिताएं जो हमें एक पत्रस के अध्याय 2 और 3 में मिलती हैं। एक ओर प्राकृतिक परिवार के भीतर पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ दूसरी ओर कभी कभी विध्वंसक ईसाई तर्कों को पेश करने के साथ जिसने इन प्राकृतिक ईसाई परिवारों के भीतर भूमिकाओं और व्यवहारों को आकार दिया और पुनः आकार दिया। एक पत्रस इफिसियों और कुलुस्सियों के विपरीत केवल कुछ भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल दासों, पत्नियों और पतियों पर। वह बच्चों और माता पिता के बारे में बात नहीं करता। वह गुलामों के स्वामियों के बारे में बात नहीं करता, और ऐसा लगता है कि जब वह गुलामों और पत्नियों को संबोधित करता है तो वह मुख्य रूप से गैर ईसाई परिवारों को ध्यान में रखता है। आइए सबसे पहले मसीही पत्नियों को दिए गए उनके निर्देशों को देखें। अध्याय 3 आयत 1 से 6 में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, ताकि यदि कुछ ऐसे भी हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे आदरपूर्ण और पवित्र चालचलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा जीते जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना या कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व हो, जो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी शोभा से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत अधिक है। क्योंकि पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने पतियों के अधीन रहकर खुद को इसी तरह सजाती थीं, जैसे सारा ने अब्राहम की आज्ञा मानी और उसे प्रभु कहा। और तुम उसके बच्चे हो अगर तुम अच्छे काम करो और किसी भी डरावनी चीज से मत डरो। इस पाठ में हम पत्नी के शास्त्रीय और यहूदी आदर्श के कुछ पहलुओं को देखते हैं। हम 3:01 में अपने पतियों के अधीन रहने के आदर्श को देखते हैं। तुम्हारा श्रृंगार हृदय के छिपे हुए व्यक्तित्व से हो, कोमल और शांत आत्मा की अविनाशी सुंदरता से, 3:04 में आज्ञाकारिता, मौन से। और सारा का उदाहरण भी पवित्र महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में, जिन्होंने ईश्वर पर आशा रखी, अपने पतियों के अधीन रहकर खुद को सजाती हैं, जैसा कि सारा ने अब्राहम को प्रभु कहा, 3:05 में। हम अक्सर और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से उस आदर्श के भीतर मौन के पहलू को देखते हैं, जैसा कि लेखक कहते हैं, ऐसा इसलिए करें ताकि भले ही कुछ लोग वचन का पालन न करें, वे अपनी पत्नियों के आचरण से बिना वचन के जीते जा सकें। लेखक यहाँ गैर ईसाई पतियों की ईसाई पत्नियों से आग्रह करता हुआ प्रतीत होता है कि वे सुसमाचार प्रचार के साधन के रूप में अच्छी पत्नी के गैर ईसाई पति के आदर्श को जिए और कम से कम ईसाई स्वीकारोक्ति और जीवन के तरीके के लिए सम्मान जीतने के साधन के रूप में। और फिर 3:06 में एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए वह लिखता है, और तुम उसके बच्चे हो, तुम सारा के बच्चे हो, यदि तुम अच्छा करते हो और किसी भी डरावनी चीज से नहीं डरते। यह शायद इसका सबसे अच्छा अनुवाद नहीं है, और मुझे डर नहीं है कि कोई भी धमकी बेहतर अनुवाद हो सकती है। एक और लेखक यहाँ फिर से सारा से साझा वंश के रूप में एक काल्पनिक रिश्तेदारी की बात कर रहा है, और मुझे बस यह उल्लेख करना चाहिए स्पष्टता के लिए, एक पत्रस मुख्य रूप से यहूदी ईसाइयों को संबोधित नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गैर यहूदी ईसाइयों को संबोधित है, क्योंकि लेखक उनके अतीत के बारे में बात करता है जो मूर्ति पूजा, व्यभिचार और अन्य चीजों के ढेर से चिह्नित है, जो यहूदियों ने नहीं किए लेकिन गैर यहूदी हर दिन करते थे। खैर, व्यभिचार वाला हिस्सा नहीं बल्कि मूर्ति पूजा वाला हिस्सा, कम से कम स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ लेखक काल्पनिक रिश्तेदारी लागू करता है। यदि आप अच्छे काम करते हैं और किसी भी धमकी से नहीं डरते हैं, तो आप सारा की बेटी बन गए हैं। हम यह भी याद कर सकते हैं कि कैसे एक अलग लेखक पॉल ने यह प्रदर्शित करने पर बहुत ध्यान दिया कि कैसे ईसाई, गैर यहूदी ईसाई और यहूदी ईसाई दोनों ही वंश से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार गलातियों और रोमियों में अब्राहम और सारा के वादों से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और गतिशीलता है, किसी भी धमकी से डरो मत। यह प्रतिरोध करने की गतिशीलता है, अधीनता नहीं, बल्कि कुछ अपरिहार्य बिंदुओं पर गैर ईसाई पति का विरोध करना, और यह घरेलू धर्म का बिंदु होगा। अपने पति के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को चुनना सांस्कृतिक आदर्श के विरुद्ध कार्य था। प्लूटार्क ने विवाह पर अपनी सलाह में लिखा है कि पत्नी को अपने खुद के दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अपने पति के दोस्तों को अपने सामान्य स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे दोस्तों में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। इसलिए एक विवाहित महिला को अपने पति के प्रिय देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए, और केवल उन्हीं को। अजीबोगरीब पंथों और विदेशी अंधविश्वासों के लिए दरवाजा बंद होना चाहिए। कोई भी भगवान किसी महिला द्वारा गुप्त रूप से किए गए पंथ से खुश नहीं होता। एक गैर ईसाई पति की पत्नी जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई है, वह अपने पति के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा करने का विकल्प चुनकर घर की एकजुटता को कमजोर कर रही होगी, जो घर के मुखिया के देवता हैं। अगर वह मूर्ति पूजा से बचने के बारे में गंभीर होती और केवल एक ईश्वर की पूजा करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर होती, तो वह घरेलू अनुष्ठानों में भाग नहीं लेती। घर की पत्नी स्पष्ट रूप से मौन रहती या अनुपस्थित रहती, जबकि घर का मुखिया पति घरेलू पूजा करता। और मुझे बस इतना कहना चाहिए, मैंने जितने भी साक्ष्य देखे हैं, कम से कम मैं कहने वाला था कि हमारे पास हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी प्राचीन घरों के साक्ष्य देखे हैं, कम से कम रोमन दुनिया में, उनमें प्रमुख रूप से तीर्थस्थल, घरेलू तीर्थस्थल शामिल हैं, जहां परिवार की आत्मा, सुरक्षात्मक आत्माएं, परिवार के लारिस, अन्य देवताओं के साथ पूजा की जाती थी, जिन्हें संभवतः पति ने वहां रखा था और तय किया था कि वे वहां होंगे। और ये मंदिर, मेरा मतलब है, हर रोमन घर में एक वेदी होती थी। वास्तव में इसमें घरेलू धर्म के लिए एक जगह थी, और अब पत्नी उस जगह से परहेज करती थी, जिससे उस समय घर में बहुत ज्यादा मनमुटाव होता था। वह अपने पति के साथ नागरिक और सार्वजनिक अनुष्ठानों में भाग लेने नहीं जाएगी। उसे अपने पति के सभी मित्रों और सहयोगियों द्वारा एक पवित्र पत्नी के रूप में नहीं देखा जाएगा। और शायद सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि अगर वह ईसाई सभा के साथ इकट्ठा होने जाती है, तो वह अपने पति के दायरे से बाहर और अपने पति की निगरानी के बिना अजनबियों के समूह के साथ इकट्ठा होने के लिए घर से बाहर निकल जाएगी। अब लेखक इस क्षेत्र में समर्पण को समझौता योग्य नहीं मानता। आपको पति की अपेक्षा ईश्वर के प्रति अधिक आज्ञाकारिता का दायित्व है, लेकिन लेखक ईसाई पत्नी से आग्रह कर रहा है कि वह जीवन के हर दूसरे पहलू में इस तरह से कार्य करे कि यह प्रदर्शित हो कि यीशु के प्रति उसकी निष्ठा वास्तव में उसे एक बेहतर, अधिक सुखद पत्नी बनाती है, यदि पति उसकी अजीब धार्मिक प्रथा के प्रति सहनशील है। किसी भी धमकी से न डरना यह भी दर्शाता है कि लेखक यह मानता है कि गैर ईसाई पति ईसाई पत्नी पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकता है और उसे रोकने और रोकने के लिए धमका भी सकता है। लेकिन इन उदाहरणों में कोई व्यक्ति ईश्वर के बजाय किसी इंसान के अधीन नहीं हो सकता। अब इसके ठीक बाद लेखक ईसाई पतियों को संबोधित करते हैं, और जाहिर तौर पर केवल ईसाई पतियों को, क्योंकि गैर ईसाई पति पत्रस की बात नहीं सुनेंगे और वह जो कहता है वह लागू नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने पहले के व्याख्यान में अधिक संक्षेप में उल्लेख किया था, 3:07 का सटीक अनुवाद करने में समस्या है। ईएसवी और निव में हम यह अनुवाद पाते हैं, इसी तरह पतियों, अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहो, महिला को कमजोर पात्र के रूप में सम्मान दो, क्योंकि वे तुम्हारे साथ जीवन के अनुग्रह के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा न आए। और फिर निव में पतियों, उसी तरह अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए विचारशील बनो और उन्हें कमजोर साथी और जीवन के अनुग्रहपूर्ण उपहार के वारिस के रूप में सम्मान के साथ व्यवहार करो, ताकि कुछ भी तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा न बने। अब हम इन सभी अनुवादों में जो देख सकते हैं, आप केजेवी, आरएसवी और अन्य की तुलना कर सकते हैं, वह यह है कि दो आदेश दिए जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त रूप से रहें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, और दो उद्देश्य बताए जा रहे हैं, वास्तव में क्योंकि आपकी पत्नी कमजोर पात्र है और क्योंकि आपकी पत्नी जीवन के उपहार की सहोत्तराधिकारी है, वह जीवन जो परमेश्वर देता है। ये सभी अनुवाद आदेश संख्या 1 प्रस्तुत करते हैं, फिर वे आदेश संख्या दो प्रस्तुत करते हैं और सुझाव देते हैं कि दोनों उद्देश्य आदेश संख्या दो से संबंधित हैं। लेकिन यह मेरी नजर में स्पष्ट रूप से ग्रीक की संरचना के विपरीत है, जहां हम पतियों को संबोधित करते हैं प्रेरणा संख्या एक के आधार पर कार्य संख्या एक करने और प्रेरणा संख्या दो के आधार पर कार्य संख्या दो करने के लिए कहते हैं। तो वास्तव में जैसा कि मैंने ग्रीक में पढ़ा, पतियों को भी अपनी पत्नियों के साथ काफी हद तक एक साथ रहना चाहिए, जैसे कि अधिक नाजुक स्त्री पात्र के साथ, और उन्हें जीवन के उपहार के आपके साथ सहोत्तराधिकारी के रूप में सम्मान दिखाएं, ताकि आपकी प्रार्थनाओं में बाधा न आए। यहाँ मेरा कहना यह है कि ईसाई पत्नी को सम्मान दिखाना लेखक द्वारा कमजोर पात्र के प्रति ईसाई पति की ओर से एक उदार इशारे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा सम्मान उसे मिलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे पति के साथ बनाया है, अर्थात परमेश्वर के अनंत जीवन के उपहार के सहोत्तराधिकारी। अब जबकि शास्त्रीय नैतिकतावादी पहले निर्देश और उसकी प्रेरणा को पहचानते और उससे सहमत होते, पतियों को विचारशील होना चाहिए क्योंकि उनकी पत्नियां शारीरिक रूप से उनसे कमजोर और अधिक असुरक्षित होती हैं। जबकि शास्त्रीय नैतिकतावादी इससे सहमत होते, दूसरा निर्देश और उसकी प्रेरणा पति पत्नी के रिश्ते पर एक विशिष्ट ईसाई मोड़ का निर्माण करती है। वास्तव में सह उत्तराधिकारी होना भाई बहन के रिश्ते की याद दिलाता है, जिसमें ईसाई पति और पत्नी भी ईश्वर के परिवार में जन्म लेने के कारण प्रवेश कर चुके हैं। तो एक तरह से प्राचीन दुनिया में पति और पत्नी के अनिवार्य रूप से पदानुक्रमित रिश्ते को चुनौती दी जा रही है। प्राचीन दुनिया में भाई बहनों के अधिक समतावादी रिश्ते द्वारा कुछ हद तक नया रूप दिया जा रहा है, जो एक ही माता पिता की संतान हैं। और यह ईसाई विवाह पर लेखक का अंतिम शब्द है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई बहस आसानी से सुलझ जाती है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि लेखक विवाह के बारे में सिर्फ शास्त्रीय या यहूदी संहिताओं और मूल्यों की नकल नहीं करता है। वह देखता है कि एक साथ मसीही बनने के कारण विवाह की गतिशीलता में कुछ नयापन आ गया है, और यह किसी तरह से उस रिश्ते को बदलने और उसे बेहतर बनाने का काम करेगा। अब हम दासों को दिए गए एक पत्रस के निर्देशों की ओर मुड़ते हैं, जो हमें अध्याय दो श्लोक 18 से 21 में मिलते हैं। वह लिखता है, सेवकों अपने स्वामियों के प्रति पूरी श्रद्धा से अधीन रहो, न केवल अच्छे और सज्जनों के प्रति बल्कि अन्यायी के प्रति भी, क्योंकि यह अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर का स्मरण करने वाला मनुष्य अन्याय से दुख उठाते हुए भी दुखों को सहता है। यदि तुम पाप करके मार खाते हो और सहते हो तो इसमें क्या बड़ाई है, पर यदि तुम भलाई करके दुख उठाते हो और सहते हो तो यह परमेश्वर के निकट अनुग्रह की बात है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। ओइकेटाई घरेलू नौकर शब्द का उपयोग करता है। वह घरेलू दासों को मान रहा है, जैसे कि आम तौर पर शहरी वातावरण में पाए जाते हैं, और यह प्रारंभिक चर्च के प्रसार के तरीके के लिए उपयुक्त है। वह यहाँ अनिवार्य रूप से यह मानकर लिख रहा है कि वह गैरीसाई घरों में दासों को संबोधित कर रहा है, क्योंकि स्वामियों को कोई पारस्परिक निर्देश नहीं दिए गए हैं, और चूंकि लेखक को ऐसा नहीं लगता कि उसके पास स्वामियों पर कोई दबाव है कि वह उन्हें कुटिल और विकृत स्वामियों के बजाय अच्छा कह सके। इन गैरीसाई घरों में दास गैरीसाई पतियों की पत्नियों की तरह, लेकिन उससे भी अधिक गंभीर रूप से घर के मूर्ति पूजक अनुष्ठानों में भाग न लेकर आदर्श के विरुद्ध कार्य करेंगे, और ईसाई सभाओं में भाग लेने के लिए भी उन्हें अपने स्वामियों से कुछ सहनशीलता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। लेखक दासों से आग्रह करता है कि वे सभी मामलों में विनम्र और आज्ञाकारी बने रहें, जिसमें वे अच्छे विवेक के साथ कर सकते हैं, आंशिक रूप से यह आश्वासन देने के लिए कि ईसाई आंदोलन रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी गुलामी को नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आंशिक रूप से ईसाई आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने स्वामियों से आवश्यक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भी। हालांकि इस उद्यम में भी लेखक 2.19 में दासों के विवेक को बहुत अधिक अधिकार देता है। उन्हें अपने ईसाई शिष्यत्व के आधार पर यह निर्धारित करना है कि पाप करने का क्या अर्थ है और अच्छा करने का क्या अर्थ है। मुझे कब न्यायोचित रूप से दंडित किया जा रहा है, मुझे कब अन्यायपूर्ण रूप से दंडित किया जा रहा है। लेखक दास को यह निर्णय लेने का नैतिक दृढ़ संकल्प दे रहा है कि वह कब ईश्वर के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है और कब नहीं, और इसलिए क्या स्वामी ईश्वर के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं। इसके अलावा जब लेखक पुष्टि करता है कि इन ईसाई दासों को अच्छे काम करने के लिए दंड स्वीकार करना चाहिए, तो वह वास्तव में अवज्ञा के एक उपाय की पुष्टि कर रहा है। सबसे अधिक संभावना है कि वह घर में मूर्ति पूजा से उनके परहेज और किसी भी अन्य चीज को ध्यान में रखता है, जहां ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें अपने स्वामियों की अवज्ञा करने के लिए प्रेरित करती है। वह यह अपेक्षा व्यक्त करता है कि वे अपने स्वामियों के बजाय ईश्वर की आज्ञा का पालन करना जारी रखेंगे और इसलिए अच्छे काम करने के लिए दंडित होते रहेंगे। लेकिन यह निरंतर अवज्ञा का एक उपाय मानता है, क्योंकि अंतिम निष्ठा ईश्वर को दी जानी चाहिए। इन दासों के स्वामियों को बदले में अब आंशिक रूप से इस बात से आंका जाता है कि वे अपने दासों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अर्थात यदि वे वास्तव में अपने दासों को एक ईश्वर की दृष्टि में अच्छा करने के लिए दंडित करते हैं, तो ये स्वामी स्वयं को दुष्ट या कुटिल स्वामी साबित करते हैं, क्योंकि वे अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक पत्रस के भीतर दासों को दिए गए निर्देश सभी को दिए गए निर्देशों के लिए आदर्श प्रदान करते हैं। इस समाज में यह काफी आश्चर्यजनक है। दास एक आदर्श नागरिक नहीं है और व्यवहार के आदर्श के लिए यह उचित स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ पत्रस दास को वास्तव में प्रत्येक मसीही के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, और इसलिए हम पाते हैं कि न केवल दास बल्कि सभी मसीहियों को परमेश्वर की स्वीकृति के प्रति जागरूकता में अनुचित पीड़ा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि दासों को उनके स्वामियों की ओर से बाहरी दुनिया के प्रत्येक मसीही की ओर से उचित पीड़ा को भड़काने का ध्यान रखना चाहिए। पहले दासों और फिर हर मसीही को प्रतिशोध न करने के लिए कहा जाता है। पहले दासों को लेकिन फिर हर मसीही को यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, और फिर सबसे पहले दासों को अपने मामले को न्याय के लिए परमेश्वर को सौंपने के लिए कहा जाता है, और फिर दो छोटे अध्यायों के बाद सभी मसीही जो अन्यायपूर्ण तरीके से पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपने मामले को न्याय के लिए ईश्वर को सौंप दें। एक और एक पत्रस शायद ही कोई मुक्तिवादी पाठ है, चाहे घर में पत्नियों के दृष्टिकोण और भूमिका के संबंध में हो या घर में दासों के दृष्टिकोण और भूमिका के संबंध में। लेकिन दूसरी ओर लेखक इन असमान संरचनाओं और संरचनाओं के बारे में श्रोता की सोच के लिए कुछ दिलचस्प चुनौतियां दिखाता है या कुछ दिलचस्प चुनौतियां पेश करता है। पहली सदी में एक ईसाई पति के रूप में क्या मैं अपने घर की महिला से मुख्य रूप से एक पति से एक पत्नी या एक भाई से एक बहन के रूप में संबंध रखने जा रहा हूँ? सभा के बीच में दासों के बारे में सोचते हुए क्या मैं उन्हें चर्च के सबसे निचले सदस्यों के रूप में या कई महत्वपूर्ण तरीकों से चर्च के अनुकरणीय सदस्यों के रूप में सोचना जारी रखूंगा? इसलिए लेखक दोनों स्कोर के लिए कुछ दिलचस्प प्रतिवाद प्रदान कर सकता है। अब चर्च का विचार एक परिवार के रूप में ईसाई आंदोलन एक रिश्तेदारी समूह के रूप में भगवान के परिवार में गोद लेने के माध्यम से एक साथ लाया जाता है ताकि वे एक दूसरे के लिए बहन और भाई बन जाएं और इस विचार के साथ आने वाली नैतिकता व्यक्तिगत आस्तिक के परिवर्तन और विश्वास के महत्वपूर्ण पोषण समुदायों के गठन के लिए शक्तिशाली संसाधन हैं, यदि हम उन्हें हमारे युग में पुनर्प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जब मैं उन चर्चों के बारे में सोचता हूँ जिनका मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वे आमतौर पर लोगों के बहुत ही सौहार्दपूर्ण समूह होते हैं, जो एक निश्चित सीमा तक अच्छी तरह से और यहाँ तक कि अंतरंग रूप से बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं से परे नहीं। लेकिन मैं उन 7 चर्चों में से केवल एक का वर्णन कर सकता हूँ जिनका मैं अपने जीवन का एक सार्थक हिस्सा रहा हूँ, वास्तव में एक परिवार के रूप में, एक समूह के रूप में जो मसीह के रक्त से संबंधित होने के आधार पर रिश्तेदारी के इस आदर्श को जीने के लिए अपने रास्ते से हट गया, किसी अन्य रक्त से संबंधित होने के विपरीत। क्या होगा अगर हमारे चर्च, क्या होगा अगर हम अपने चर्चों के हिस्से के रूप में वास्तव में अपने साथी ईसाइयों, हमारे भाइयों और बहनों के साथ वास्तव में भाइयों और बहनों के रूप में व्यवहार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, न कि केवल एक तरह के धार्मिक शीर्षक के रूप में, बल्कि ऐसे लोगों के रूप में जिनमें हम खुद को निवेश करेंगे जैसे कि वे हमारे माता पिता के बेटे और बेटियाँ हों, हमारे बहुत ही स्वाभाविक माता पिता के। क्या होगा अगर, उदाहरण के लिए, एक अकेली माँ एक चर्च में आती है और उसे वहाँ एक ऐसा समुदाय मिलता है जो उसे काम करते समय अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल करने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर का परिवार क्या मायने रखेगा जब उसे पता चलता है कि वह वास्तव में दिन के दौरान अपने बच्चों की देखभाल दूसरों को सौंप सकती है, जब उसे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अकेले माता पिता और अकेले कमाने वाले होने की दिन प्रतिदिन की चुनौतियों में उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या होगा अगर वे 2 झगड़ते चर्च के सदस्य और आप सभी जानते हैं कि मेरा मतलब किससे है। क्या होगा अगर हमारे मंडली के वे 2 झगड़ते चर्च के सदस्य हमें उसी तरह से उनके साथ आते हुए पाएं जो अनिवार्य रूप से, मुझे लगता है, यह मेरा अनुभव रहा है, अनिवार्य रूप से हम अपने प्राकृतिक परिवार के सदस्यों के पास आते हैं जो बहुत लंबे समय से झगड़ रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने ऐसा किया है, हम सभी ने ऐसा किया है, यह मेरे साथ हुआ है, जहां हमारे प्राकृतिक परिवारों के कुछ सदस्य वास्तव में हमें बैठाएंगे और कहेंगे, अब यह जारी नहीं रह सकता। हम इन मुद्दों को सुलझाने जा रहे हैं ताकि हम फिर से एक सुचारू रूप से काम करने वाला परिवार बन सकें और इस मतभेद को दूर कर सकें। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति जो पाप करते हुए पाया जाता है, उसे पता चलता है कि उसके आसपास के चर्च में ईसाई उस व्यक्ति को बहाल करने में अधिक रुचि रखते हैं, वास्तव में उस व्यक्ति की शर्म को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय उस व्यक्ति की शर्म को दिखाने और उसे बाहर निकालने या उसे अयोग्य और अशुद्ध महसूस कराने के। क्या होगा अगर हम उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने स्वाभाविक रिश्तेदारी समूह के सदस्य के साथ करते हैं जो मुसीबत में पड़ गया, जिसने गड़बड़ की, उसी उत्साह के साथ बहाल करने और मदद करने और ऊपर उठाने के लिए। किस तरह की शक्तिशाली संस्कृति, किस तरह की आकर्षक संस्कृति ईसाई चर्च बन जाएगी? और क्या होगा अगर हम चर्च के बारे में इन शब्दों में सोचें, यहाँ तक कि हमारी स्थानीय मंडली से परे, यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय से परे, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय सीमाओं से परे? क्या होगा अगर वे लोग जो अभी भी मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, वैश्विक चर्च को उनके साथ आने, उन्हें हर संभव भौतिक या आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने, उनके मामले को अपने ही मामले की तरह उठाने, उसी उत्साह के साथ उठाने के लिए तैयार हो जाएं, जिस उत्साह के साथ हम अपने बच्चे को सताए जाने या हाशिए पर रखे जाने पर करते हैं? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही लोकाचार है जिसे नए नियम के लेखक ईसाई आंदोलन में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक दूसरे को बहन और भाई के रूप में सोचने के लिए प्रेरित किया, न कि केवल अजनबी के रूप में जो एक ही स्वैच्छिक संगठन से संबंधित हैं। और जितना अधिक हम प्रेम के इस लोकाचार को मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि चर्च की गवाही, चर्च की दृढ़ता और चर्च की वृद्धि को पोषित किया जाएगा। मुझे याद आया और मैं चाहता हूं कि मुझे वह शास्त्रीय पाठ ठीक से याद हो जिसमें मैंने इसे पाया था, लेकिन दूसरी और तीसरी शताब्दी में ईसाई आंदोलन के बारे में गैर ईसाई बाहरी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजों में से एक यह थी कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते थे। वह था एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम और स्वीकृति। गवाही यह देखने के लिए है कि वे एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। यह हर जगह चर्च के बारे में फिर से कहा जा सकता है। अगर हम अपने रिश्तेदारी को अपनाएं, एक कीमत पर यीशु ने हमें ईश्वर का परिवार बनाने के लिए हमारे लिए मर दिया। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर दिए गए अपने व्याख्यान का अंश है। यह सत्र 6 रीडिंग 1 पीटर अट्यून्ड टू किनशिप स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज है।